ओम शांति। सम्माननीय डॉक्टर प्रताप जी, मुकेश अग्रवाल जी, प्यारे भाई और बहनों, आज संसार को जरूरत है स्पिरिचुअल पावर की। हमें संसार को एक बनाना है, एकता की ओर ले चलना है। इसकी शुरुआत हम करते हैं अपने अपने परिवारों से। आप जिस जिस फील्ड में अग्रसर हैं, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, वहां भी संगठनों में एकता रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सब जानते हैं, आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, यूनिटी इज पावर। संगठन में कितनी शक्ति है ये हम सब रोज देखते हैं। बड़े बड़े कार्य जो बहुत कठिन होते हैं, जब शक्ति संगठित हो जाती है तो बड़े बड़े कार्य खेल की तरह संपन्न हो जाते हैं। आज यहां बैठकर आप और हम सभी बहुत गहराई से चिंतन करेंगे कि संगठन को एकता के सूत्र में बांधने में मेरा क्या योगदान होगा। जिस संस्था से भी आप जुड़े हैं, जिस परिवार के आप हेड हैं, जिस परिवार के आप सदस्य हैं, उसमें शक्तिशाली बनाने के लिए, उसमें बिखराव को समाप्त करने के लिए, उसमें अनेकता की भावना को समाप्त करने के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मैं क्या योगदान दे सकती हूं, आज इस पर बहुत प्रैक्टिकल रूप से चिंतन करेंगे। और मुझे विश्वास है न केवल ये सेशन आपको कुछ सुनने को मिले इस सेशन में, लेकिन आप आज यहां से कुछ सीख कर ही उठेंगे। चाहे हम राष्ट्र की बात लें, चाहे संसार की बात लें, चाहे अपने देश में भिन्न भिन्न प्रांतों की बात लें, चाहे भिन्न भिन्न संगठनों की बात लें, संगठन को तोड़ने वाली चीज होती है स्वार्थ और अभिमान। अगर हमें किसी भी संगठन को, देश को, प्रांत को एकता के सूत्र में बांधना है तो हमें स्वार्थ भाव से परे निरअभिमानी बनना ही होगा। कहीं भी आप देख लो, जिस परिवार का हेड अभिमानी हो वहां सुख शांति का वास नहीं होता। जिस स्कूल कॉलेज का हेड अहंकारी हो, क्रोधी हो, उस कैंपस में भी सुखद वाइब्रेशंस नहीं होते। मेरा नाता विद्यार्थियों से भी बहुत रहता है। आजकल विद्यार्थी अपनी समस्याएं मेरे सामने रखते हैं। मैं इस टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपको कहता चलूंगा। विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा, बुजुर्गों में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन का माहौल बनता जा रहा है। मेरे पास युवकों के जब फोन आते हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं टॉप क्लास स्टूडेंट रही थी, पर अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा पढ़ने को मन नहीं करता है, किताब खोलने की रुचि नहीं होती है, मैं खुद भी परेशान हो गई हूं, मेरे माँ बाप भी बहुत चिंतित हो गए हैं। मैं आप सभी को कहूंगा, चाहे इसको रिक्वेस्ट माने, अपने अपने कैंपस में, घर, स्कूल, कॉलेज, खुशी का, प्रेम का और सरलता का वातावरण क्रिएट करें। इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी का मानो सागर लहरा रहा है, उसमें हरेक व्यक्ति इन्वॉल्व होता जा रहा है। संसार मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से, केवल संसार में मानसिक रूप से अनेक लोग त्रस्त होते जा रहे हैं। बिना कारण ही ब्रेन पर प्रेशर फील करते हैं। यहां आकर आप सबको सीखना है हमें अपने चित्त को कैसे शांत करना है। बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल बात आपको बता देता हूं, जो मैं विद्यार्थियों को भी सिखाता हूं और बड़ों को भी। जितना मनुष्य निगेटिव सोचता है, जितना उसके मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है, जितना उसके ब्रेन पर किसी भी बात का प्रेशर रहता है, आत्मा से निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाती है। इससे ब्रेन कमजोर होते जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो आपको इस पे ज्यादा बता सकते हैं। ब्रेन कमजोर होने से अनेक समस्याएं संसार में, अनेक बीमारियां उग्र रूप लेती जा रही हैं। तो हम सभी पहले अपने जीवन में खुशी भरें, सभी के लिए प्रेम भरें और अपने एटीट्यूड्स को बहुत पॉजिटिव करें। आज मैं देखता हूं संसार में अनेक समस्याओं का कारण है मनुष्य ने अपने एटीट्यूड्स, अपने दृष्टिकोण को बहुत निगेटिव बना लिया है। और हमें जानना चाहिए, जैसा हमारा दृष्टिकोण दूसरों के लिए होता है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से प्राप्त होता है। इसलिए चाहे देश को एकता के सूत्र में बांधने की बात हो, चाहे अपने संगठनों को, हम याद रखेंगे एक बहुत सुंदर स्लोगन, ईश्वरीय ज्ञान में हमें बचपन से ही मिला, वो आपके सामने रखता हूं। हम एक हैं और एक के हैं। यहां आकर आपको ये अवेयरनेस अवश्य मिल रही है कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये संसार एक विशाल परिवार है। हम केवल भगवान के भक्त नहीं, हम उसके आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, हम केवल प्रेयर करके कुछ मांगने वाले नहीं, हम उस भगवान के बच्चे हैं जो सुखों का सागर है। हम उसके बच्चे हैं जो प्रेम का सागर है। हम उसके बच्चे हैं जो शांति का सागर है। तो हमें भी इस संसार में प्रेम की गंगा बहानी है। हमें भी सबको शांति का दान देना है। हमें दूसरों के दुख हरने हैं। अगर हम उस भगवान के बच्चे हैं जो दुख हरता है, तो हमें भी सबके दुख हरने का काम करना है। आज क्या हो रहा है, क्यों संगठन टूट रहे हैं, क्यों देश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ, क्यों संसार में सभी देशों के बीच एक आंतरिक युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका कारण कोई भी देना नहीं चाहता, सब लेना चाहते हैं, सब दूसरे को अपने अधीन करना चाहते हैं, किसी में भी समानता का भाव नहीं रहा है। सभी यहां आकर सीख लें। मैं फिर उस स्लोगन को रिपीट करता हूं, हम एक हैं और हम एक के हैं। उससे हमें अपना नाता जोड़ना है। मैं संसार की बहुत सारी चीजों को देखकर सोचता हूं, हमारे यहां ईश्वरीय ज्ञान में ये बात बहुत अच्छी तरह से सबको ज्ञात है कि आज इस संसार को पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको छोटा सा एक बात कहूं, अमेरिका चाहे संसार में सबसे शक्तिशाली देश हो, ब्रिटेन चाहे बहुत शक्तिशाली देश हो, जर्मन में चाहे बहुत धन संपदा हो, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली देश वही होता है जिसके लोग चरित्रवान होते हैं, जिसके लोगों में पवित्रता होती है। और मैं आप सभी को ये बता दूं, इतिहास के आधार पर जब कोई भी सभ्यता काम प्रधान हो जाती है, जब किसी भी सभ्यता में स्वार्थ का भाव बढ़ जाता है, जब किसी भी सभ्यता में ईर्ष्या द्वेष और नफरत चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, समझ लेना चाहिए उस सभ्यता की समाप्ति के दिन समीप हैं। इसलिए आप सभी यहाँ आए हैं, सभी एक अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, आप शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ बैठी हैं, आप सभी का बच्चों से उनके माता पिता से बहुत गहरा संबंध रहता है और आप सबकी छाप बच्चों पर बहुत गहरी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विद्यार्थियों में श्रेष्ठ चरित्र की लहर फैलाने का काम करें। इस समय भगवान सबको संदेश दे रहे हैं कि मेरे इस महान देश भारत को पुनः पवित्र बनाओ, यहाँ चरित्रता की श्रेष्ठ चरित्र की लहर फैलाओ, क्योंकि चरित्र ही किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन तो आता है और चला जाता है, शासक भी आते हैं और चले जाते हैं, और ये जो विकास है ये भी आया है और चला जाएगा, लेकिन मनुष्य का चरित्र सदा कायम रहता है। इसलिए जहाँ चरित्र है वहीं संगठन की शक्ति है, वहीं वो देश बहुत शक्तिशाली है। हमारे देश में विविधता है, वैरायटी है, भिन्न भिन्न कल्चर हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मैं भारत के हर प्रांत में जाता रहता हूँ, साउथ के बहुत सारे लोग नॉर्थ की कल्चर को जानते ही नहीं हैं, नॉर्थ के बहुत सारे लोग साउथ की कल्चर को पहचानते ही नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं, हमारा भारत एक है। इसके पीछे क्या रहस्य है कि हमारे देश में जो अध्यात्म है जो नष्ट नहीं हुआ है, भले यहाँ भिन्न भिन्न धर्म प्रचलित हों, भले यहाँ भिन्न भिन्न मत प्रचलित हों, यहाँ के सभी के विश्वास अलग अलग हों, हर क्षेत्र में गुरु भक्ति और उनके इष्ट देव देवियाँ अलग हों, फिर भी हम सब इस बात को विश्वास करते हैं कि हम सब एक हैं। मैं आप सभी को तीन चीजें और कहूंगा जिसके द्वारा हम चारों एकता का माहौल पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। आप यहां आए हैं, कोई पहली बार आए होंगे, कोई दूसरी तीसरी बार भी आए होंगे, आप सभी को ये बात जानकर बहुत आनंदित होना है कि हम सभी देवताओं की संतान हैं। आप जानते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। कई विदेशी लोग भारत वालों को हंसा करते हैं कि हमारे पास तो भगवान एक है, इन हिंदुओं का देखो 33 करोड़ भगवान हैं। लेकिन आपको मालूम हो वो 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवान तो एक है। वो 33 करोड़ थे भारत के देवी देवता, अर्थात भारत के मनुष्य ही देवता थे, भारत देव भूमि था। आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम हो। और वो मनुष्य कौन थे जो देवता थे, सोच लें सभी, वो कहाँ चले गए? जब हम देवताओं को कहते हैं देवता तो अमर थे, वो मरते नहीं थे, तो कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए? मालूम है आपको कहाँ चले गए? वो इसी हॉल में आ बैठे हैं बहुत सारे, पता है आपको? आप सभी जो अपने को हिंदू कहलाते हो, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो, हम आपको याद दिला रहे हैं हजारों साल पहले आप देवता थे। इसलिए सभी के अंदर देवत्व छुपा हुआ है, उस देवत्व को पहचानो, उस देवत्व को उजागर करो, वो देवत्व जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो फिर से हम मनुष्य से देवत्व की ओर चलेंगे और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। जैसे आप सुन रहे हैं हमारे नेता लोग आजकल, आप जानते हैं सब, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी लक्ष्य दिया है हम भारत को विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो राजनीतिक कुशलता के साथ, बाह्य विकास के साथ, आध्यात्मिकता के शिखर पर हमें पहुंचना भी आवश्यक होगा। विकास और अध्यात्म जब दोनों एक हो जाएंगे तो हमारा ये महान देश भारत संसार का नेतृत्व करेगा, विश्व का गुरु बन जाएगा। और आप सबको ये खुशखबरी ज्ञात हो कि बहुत जल्दी आपके देखते देखते ही भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। तो मैं सभी आपको कहूंगा, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानो। क्यों आज मनुष्य टेंशन में है, क्यों उसके चेहरे की खुशी उड़ गई है, किसने छीन ली है उसकी शांति, मैं बहुत देखता हूं लोगों को। क्योंकि हमारे अंदर जो देवत्व है हम उसके विरुद्ध काम करते हैं। जो हमारे अंदर देवत्व है उसके विरुद्ध हम सोचते हैं, उसके विरुद्ध हम व्यवहार करते हैं, तो हमारी इनर कॉन्शियसनेस उसे स्वीकार नहीं करती और मनुष्य अशांत हो जाता है। इसलिए यदि अपने जीवन में शांति चाहिए, न केवल शांति, यदि स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है ताकि आने वाले चैलेंजेस को हम आराम से फेस कर सकें, यदि स्वयं के जीवन में खुशी ही खुशी लानी है तो अपने को पहचान कर अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को सभी उजागर करें। उसी देवत्व में मैं तीन बातें आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात है, इन तीनों बातों पर आप गौर करेंगे, चाहे व्यक्तिगत जीवन, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ, चाहे और कहीं पारिवारिक जीवन में, स्नेह, सहयोग और सम्मान। ये तीन नैतिक मूल्य हमें हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। स्नेह, सहयोग और सम्मान, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह क्योंकि आप ऐसे फील्ड में रहते हैं जहां चारों ओर युवक ही युवक आपको दिखाई देते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारी कल्चर में सम्मान का कितना महत्व था, गुरुजनों का, शिक्षकों का कितना मान होता था। आज उसकी बहुत कमी दिखाई देती है। मैं एक बार मेलबोर्न में था, ऑस्ट्रेलिया में, एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था कॉलेज में, तो मैं देख रहा था के सारे टीचर कुर्सियां लगा रहे हैं और स्टूडेंट उन पर आ आके बैठ रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। मैं सोचने लगा ये डिफरेंस है भारत की महान कल्चर और इस वेस्टर्न कल्चर में। हमारा देश सचमुच एक महान कल्चर का धनी रहा है। यहां की सभ्यता में सम्मान, बड़ों का सम्मान एक महत्वपूर्ण बात थी। मैंने अनेक केसेस में एक बात नोट की है कि बच्चे ने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पर उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। जब भिन्न भिन्न तरीकों से उसका कारण ढूंढा तो पता चला कि उसके अंदर बहुत क्रोध है, वो अपने माँ बाप से झगड़ा करता है, वो अपने माँ बाप का अपमान करता है, तो माँ बाप के गुड वाइब्रेशंस, माँ बाप की दुआएं उसके साथ नहीं हैं। और मैंने जब उसको कन्विंस किया कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनकी दुआएं प्राप्त करो, तो आपको ये जानकर आनंद होगा, 2 मास में ही उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। बड़ों की दुआएं, बड़ों के गुड वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स, हमारी युवा पीढ़ी को समझ लेना चाहिए कि ये उनके विकास के लिए परम आवश्यक है। सहयोग, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग दें। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है पर हम उसकी टांगे पीछे खींचते हैं। मैं ज्यादा न कह के एक सूक्ष्म बात आपको कह देता हूं, एक सीक्रेट सुना देता हूं। जो व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करता है, कॉमन बात है ना इस संसार में, वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। अच्छी तरह समझ लें, वो सफलता से ईर्ष्या करता है। तो सफलता उसके द्वार पर कभी नहीं आएगी। इसलिए यदि आपको सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है तो दूसरों की सफलता को देखकर उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी वाह वाह करें, उनको आगे बढ़ने में सहयोग दें। ये बहुत अच्छा सीक्रेट है। हमारे समाज में जो एक प्रथा हो गई है कि जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांगे खींच लो। क्यों ये आगे बढ़ रहा है? बढ़ना तो हमें आगे चाहिए था। इसमें हमारे देश की प्रगति रुकती है, इसमें माहौल निगेटिव हो जाता है और मनुष्य के अंदर एक ऐसी घृणा और नफरत की भावना पैदा होती है जिसका इफेक्ट उसके ब्रेन पर आता है। सहयोग लें, सहयोग दें। हम अपने संगठन में, अपने परिवार में ऐसी एक परंपरा चालू कर दें, ऐसा एक माहौल बना दें कि हम बुद्धिमान मनुष्य हैं। आप सब बहुत बुद्धिमान यहां बैठे हैं, शिक्षक संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। आप इस परंपरा को प्रारंभ करें, दूसरों को आगे बढ़ने में, बढ़ाने में हम उनका सहयोग करेंगे। मैं जानना चाहता हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? तैयार हैं? तो हमारे देश का रूप रंग बदल जाएगा। यहां कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा। जो आगे बढ़ेगा उसको और सब लोग आगे बढ़ाएंगे। स्नेह, प्यार, आप देख सकते हैं संसार में प्यार की कमी होती जा रही है। और व्यक्तिगत रूप से भी आप ध्यान दें, जिस मनुष्य के पास खुशी और प्रेम नहीं है वो अनेक बीमारियों का, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ हो जाता है। अगर हम अपने चित्त को खुश रखना सीख लें, अगर हम सभी के लिए अपने मन में प्रेम भाव पैदा कर लें, तो हमारा जीवन अनेक बीमारियों से मुक्त और अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। मेरा संबंध आजकल लोगों की समस्याओं को समाधान कराने के लिए मनुष्यों से बहुत रहता है और मैं देखता हूं जो मनुष्य जितना निगेटिव है, जो मनुष्य जितना परेशान रहता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचता है, उसका जीवन समस्याओं से घिरा रहता है। उसे परिवार में भी सुख नहीं मिलता, उसे अपने काम धंधों में भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए यहां आपको एक सुंदर अवेयरनेस दी जा रही है, सब आत्माएं हैं। कोई हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये तो देह के धर्म हैं। सब आत्माएं हैं, सब एक भगवान के बच्चे हैं, हम सबका घर भी एक है। इसलिए हम अपने मन में सभी के लिए प्रेम भाव पैदा करें। मैं तो उस दिन के स्वप्न देख रहा हूं जब भारत की इस महान भूमि में सभी एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, जहां किसी के अंदर भी किसी के लिए नफरत और घृणा का भाव ही नहीं होगा। आप सोच लीजिए, अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं और वहां 20 टीचर हैं, सब में बहुत प्यार हो, तो उनकी समस्याएं उस प्यार में बंट कर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मान लो एक व्यक्ति अपने घर से समस्याओं से भरा हुआ आता है स्कूल में और वहां उसे प्यार का माहौल मिलता है तो उसकी समस्याएं स्वतः ही डाउन हो जाएंगी। और अगर वहां उसको भारी माहौल मिल जाए, अगर वहां उसको सभी कटु दृष्टि से देखने लगे, अगर वहां सभी उसकी ग्लानी करने लगे तो उसकी समस्याएं दुगनी हो जाएंगी। इसलिए आप सभी से हमारी अपेक्षा है कि इस महान देश भारत में आप सभी प्यार की पवित्र गंगा बहाएं, जिस गंगा में स्नान करके सभी के चित्त प्रसन्न हो जाएं, सभी का मन सरल हो जाए, सभी सहज भाव से आगे बढ़ने लगें, तो हम सब मिलकर ऐसा महान कार्य करेंगे। मेरी शुभ भावनाएं हैं आप सब जहां से भी आए हैं, पहले अपने परिवार को, फिर अपने स्कूल कॉलेज को और फिर बाहर, संगठन को एकता के सूत्र में बांधें। एकता में बहुत शक्ति है, आपके जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। आप सभी यहाँ आए और अवश्य बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, मेरी यही आप सबसे श्रेष्ठ शुभ भावना है, शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।